بسم الله الرحمن الرحيم آج پہلے ترویحی میں جو قرآن پاک پڑھا گیا تھا اس کے مضامین میں سے کچھ آپ کو سنائے جاتے ہیں. پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کے درجات آپس میں مختلف ہیں، ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پیغمبر ایک مرتبے کے نہیں ہیں، اللہ پاک نے پیغمبروں میں مرتبے بنائے ہیں. اسی لیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبے میں سب سے افضل مانا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، سارے رسولوں میں افضل ترین ہیں. رسولوں پر ایمان کے دو مرتبے ہوتے ہیں، دو درجے ہیں، دو باتیں ہیں اس میں رسولوں پر ایمان میں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہر رسول اور نبی پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے شرط ہے. کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو مسلمان نہیں رہتے، اور مسلمان کے لیے بھی یہ شرط ہے اور کسی دوسرے کے لیے بھی یہ شرط ہے. یعنی اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے جو شرط ہے کہ اللہ کو مانے، اس کے ساتھ اللہ کے رسولوں کو مانے. تو رسولوں میں ایمان لانے میں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں میں کسی کے درمیان، یعنی ایمان لانے میں. سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو مسلمان باقی نہیں رہتے. اس لیے جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، چاہے وہ اپنے کو کوئی مذہبی بتائیں، صاحب کتاب بتائیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ قاعدہ ہے. جو ویسی بات اپنی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں بولتے ہیں ویسا نہیں، یہ عقیدے کی چیز ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں تعبیر کروں آپ کی سہولت کے لیے، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی آدمی جنت میں جا سکتا ہے تو یہ سمجھنے والا جہنمی ہے، یہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے، وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ اس کو ایمان کا مطلب ہی نہیں معلوم، نہ صرف مطلب نہیں معلوم، عمل بھی نہیں کر رہا ہو. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بغیر بھی کوئی آدمی جنت میں جا سکتا ہے. تو رسول پر ایمان لانے کی جو شرط ہے وہ فوت ہوتی ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھ رہا اس شرط کو، تو یہ خود مومن نہیں رہتا ہے. اس لیے اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ ہم ہوں یا کوئی اور ہو، جیسے کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے جہنم میں جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے جہنم میں جائے گا. ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ اللہ کے سچا ماننے کے لیے ضروری ہے. اللہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ نو بلائیں گے اللہ تو سچے ہیں، تو جن کو انہوں نے رسول اپنا بتایا اس کو رسول ماننا ضروری ہوتا ہے، جن کے نام بتایا ان کو نام کے ساتھ ماننا ضروری ہوتا ہے، جن کے نام نہیں بتائے گئے ان کو اجمالاً ماننا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اور جو لوگوں کے بارے میں مشہور ہو جائیں کہ شاید وہ بھی نبی تھے، تو ان کے بارے میں نبوت کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ نبی کے ماننے کے واسطے دلیل ضروری ہوتی ہے، دلیل قطعی ضروری ہے. صرف گیس پر ان کو نبی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ عقیدہ صرف اندازے پہ نہیں ہوتا. جیسے بدھ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نبی تھے، ذوالقفل سے وہی مراد ہیں، رام کے بارے میں، لکشمن کے بارے میں، برہمن کے بارے میں، اور دوسرے آرسوں کے بارے، ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہمارے ہندوستان میں بالخصوص اوتار کہے جاتے ہیں، دوتا مانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال ہے ان لوگ، بہت سے لوگوں کا، مسلمانوں کا، کہ شاید وہ پیغمبر تھے. تو شاید تھے بولنا ضروری، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پتہ نہیں تھے نہیں تھے، لیکن ہاں تھے اس کے لیے دلیل چاہیے. اس کی کوئی دلیل ہے نہیں کہ وہ حضرات خاص ان ناموں کے ساتھ جو اشخاص گزرے ہیں، جو شخصیتیں گزری ہیں، وہ پیغمبر تھیں یا نہیں، اس لیے ان کو نہیں مانا جائے گا، ایز اے پیغمبر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ہم اپنے عقیدے میں شامل نہیں کر سکتے ہوں. تو دو چیزیں ہیں یہ، ایک تو ہر نبی پر ایمان لانا ایمان کے لیے شرط ہے، کوئی بھی کسی بھی نبی کا انکار کرنے والا پایا جاتا ہو اس کے اپنے مذہبی باتوں کو فالو کرنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں کنسیڈر ہوگا. और वो जहन्नम में जाएगा सीधा। कितना ही पायस हो, कितना ही अच्छा मुत्तकी चैरिटी देने वाला, कुछ करने वाला, खैरात करने वाला, कुछ भी करने वाला, वो जहन्नम में जाएगा। ये अकीदे की चीज है, इसमें कोई लचक नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसका मुरव्वत से कोई ताल्लुक नहीं है, लोगों की हमदर्दी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अकीदों के अंदर हमारा कोई अख्तियार नहीं होता, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, हम अपनी रियायत नहीं कर सकते इसके साथ में। दूसरी चीज यह है कि रसूल जो है और नबी वो सब एक ही दर्जे के थे, ये मुसलमानों में से बाज लोगों का ख्याल है, यह भी गलत है। तीसरे पारे के पहली आयत में सराहत के साथ अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं जो हमने सुना आज कि रसूलों को हमने दर्जे दिए हैं, तिलकर रसूल फवलना बाबहुम अला बाब मिनहुम मन कल्लमल्लाह वरफअहुम बाबहुम दरजात, किसी से अल्लाह ने बात की है वैसे उनको खास शराफत और बुजुर्गी दी है, किसी को अल्लाह ने अपना कलमा बताया है वैसे उनको खास शराफत अता फरमाई है, और किसी को अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है वैसे उनको शराफत और बुजुर्गी अता फरमाई है। एक मजमून ये गुजरा। दूसरा यह है कि ये जो इंसान आपस में लड़ते हैं, मजहब की बुनियाद पर लड़ें या गैर मजहब की बुनियाद पर लड़ें, उसके बारे में एक अजीब बात कही। फरमाया कि ये जो लड़ते हैं अगर अल्लाह चाहता तो न लड़ते। अब इसका मतलब क्या है आप ही समझें, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह चाहते थे कि इंसान न लड़े और इंसान चाहते थे कि लड़े, तो अल्लाह का चाहना तो पूरा नहीं हो सका, इंसान का चाहना पूरा हो गया। अल्लाह के चाहत के मुकाबले में इंसानों की चाहत गालिब आ गई, तो फिर अल्लाह बड़े हो गए कि इंसान बड़े हुए, यह है वो बात। इसका मतलब यह है कि जो लोगों में इख्तलाफात वगैरह पाए जाते हैं, जिम्मेदारी तो है कि किस कौन गलती पर है कौन नहीं, लेकिन तकवीनी एतबार से अल्लाह पाक की मशीयत होती है। अल्लाह पाक बहुत सी चीजों से राजी नहीं होते लेकिन उन चीजों को रवा रखते हैं, होने देते हैं। तो ये जो इंसानों का आपस में लड़ना झगड़ना है, ये अगर मैं चाहता तो कोई न लड़ता, लेकिन तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है करता है, लिहाजा इनको लड़ने दे रहा है तो क्यों लड़ने दे रहा है उसको मालूम है। वले शाअल्लाहु मा कतलू वलाकिनल्लाह यफअलु मा युरीद, अगर अल्लाह चाहता तो कोई आपस में न लड़ता, न मजहब की बुनियाद पर न गैर मजहब की बुनियाद पर, लेकिन अल्लाह पाक जो चाहता है करता है, तो क्यों चाह रहा है उसको मालूम है। तीसरा मजमून ये बयान फरमाया गया है कि लोगो तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए जिस दिन तुम अपनी जात को बचाने के लिए कोई चीज से मदद नहीं ले सकते, ना खरीदो फरोख्त कर सकते कुछ, ना दोस्ती से काम चला सकते, ना कोई सिफारिश तुम्हारी करेगा अल्लाह के अजाब से बचने के लिए, और ना तुम अपनी खुद मदद कर सकते। मिन कबल याति यौमुल्ला बयउफी वला खुल्ला वला शफा, शफा से काम नहीं चल सकता का मतलब क्या है, सिफारिश से, इसका मतलब बगैर अल्लाह की मर्जी और इजाजत के, कि अल्लाह की तो मर्जी नहीं है किसी के बारे में मगर कोई सिफारिश करके बीच में दखल देके उसको छोड़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी शफात करेगा सिफारिश करेगा वो अल्लाह के इज्जत से करेगा, और अल्लाह ने यह बता दिया कि मेरी शफात में शफात की इजाजत किन के हक में दूंगा, अपने पैगम्बर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और दूसरे लोगों को जिन जिनको सिफारिश की इजाजत होगी वो बता दिया गया है। उसमें एक चीज कंफर्म बता दी गई है कि जो ईमान में नहीं होगा उसके लिए इजाजत नहीं होगी, जो ईमान वाला नहीं होगा उसके लिए इजाजत सिफारिश की किसी को नहीं होगी। तो सिफारिश ऐसी जो दुनिया में चलती है जिसके जरिए से किसी आदमी का काम बना दिया जाता है, ऐसी कोई सिफारिश का तसव्वुर आखिरत में अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह के पास सिफारिश का सिर्फ जो मर्तबा है, दर्जा है, मकसद है, वो ये है कि जिसको सिफारिश करने की इजाजत देंगे उसकी महबूबियत और उसके मर्तबे को बताना चाहेंगे कि मखलूक के सामने कि ये बंदा मुझे कितना पसंद था, इसी वजह से वह जिसको चाहेंगे कि तुम इनकी कर सकते हो, इनकी कर सकते हो, इनकी कर सकते हो, उनकी करोगे, उनको इजाजत मिलेगी। और ये बात ये अकीदे में शामिल है कि इस उम्मत मुस्लिमा के गुनहगारों के लिए और गुनाह कबीरा वालों के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी हैं, सिर्फ छोटे गुनाह वालों के लिए नहीं बड़े गुनाहगारों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलेगी पूरी उम्मत के लिए, जो ईमान पर मरा हो तो उसके हक में आप सिफारिश कर सकते हैं, और सरकार करेंगे भी, लेकिन पूरी उम्मत को सिफारिश करके निकालने तक काफी वक्त निकलेगा, तो जो सिफारिश के जरिए से निकलने वाला ग्रुप है जहन्नम से, वो उस वक्त तक जहन्नम में रहेगा, वो कोई कम पीरियड नहीं होता, वो कोई थोड़ी मुद्दत नहीं होती, वो अच्छी खासी मुद्दत हो जाती है। लेकिन ईमान का फायदा मिलेगा, उम्मत मुस्लिमा में ईमान का फायदा जरूर मिलेगा कि उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पहुंचेगी। ये अकीदे में है ये बात कि अहले कबाइर के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। हमारे अकीदे में अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे का यह हिस्सा है और नुसूस और कुरान और हदीस इस पर बिल्कुल नातिक है, यानी इसमें साफ ये बात मौजूद है। एक मजमून इस पहले तरवीह के अंदर जो सुनाया गया है वो है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे, ये जो अकीदा दिया जाता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ये बात बिल्कुल अच्छी तरह आदमी के दिमाग में हो, चूंकि तसव्वुर आखिरत, आखिरत का अकीदा और अमल का बदला पाने का यकीन, यही इंसान के कैरेक्टर को, अमल को सही कर सकता है। कोई कायदा, कोई कानून, कोई फोर्स, कोई ताकत ये आदमी को अंदर से सही नहीं कर सकती, ये कायदा ही। आदमी के जमीर में इतना तनव्वो है, यानी इतनी रंगारंगी है, इतनी किस्में हैं उसके अंदरून में, उसके जमीर में, उसके दिल के अंदर, उसको अपने ख्वाहिशात पूरी करने में, कि आप किसी लॉ को पास करके, किसी फोर्स को लगा के, पुलिस को लगा के, फौज को लगा के, जासूसों को लगा के, किसी के जरिए से भी आप ये चाहें कि इंसान जो है बेकानूनी न करें, यह नहीं हो सकता। और 10,000 साल तजुर्बा करके देखना हो तो देख ले इंसान, नहीं हो सकता। ये इंसान के कैरेक्टर के सही होने के लिए, अब उसके जमीर के अंदर से दुरुस्त होने के लिए अल्लाह के पास जवाबदही का अकीदा है, अपने अमल का बदला पाने का अकीदा है। इस अकीदे से ही आदमी सही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है, वरना किसी न किसी शक्ल से आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा। जैसे है ना, स्पीडिंग के वास्ते कायदा बना हुआ है कि स्पीडिंग करेंगे तो जुर्माना मिलेगा, लेकिन लोग स्पीडिंग करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पीडिंग करते हैं तो फिर उन्होंने ऐसे मशीनें निकाल ली हैं कि जहां करीब में पुलिस है, ठीक 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 करके इसको बता देती है, यानी भाई करीब में पुलिस है, वहां पे सुलह हो जाओ। जैसे वो घंटी नहीं बजती है उसकी मशीन की, फिर तेज भगाना शुरू कर देते हैं। है नहीं तरीके ऐसे, हर में से शराब बंद की थी यहां पर हुकूमत वालों ने, एक जमाना पहले 55 की बात है, 1955 में, तो जनाब वाला उस जमाने की रिपोर्ट यह है कि जितनी शराब पहले लीगल तरीके पर बिकती थी अब इलीगल तरीके पर 3 गुना ज्यादा हो गई है। तो फिर उसको अलाउ किया गया, लीगल किया गया कि भाई ठीक है शराब बनाओ पियो मजे करो, तो फिर कम हो गई वो, क्योंकि आदमी अपनी चॉइस से कम करता है, उसको रोके तो वो नहीं रुकता, वो और रास्ते निकालता है, बुराई कम करने के रास्ते बोलो आप कुछ भी। सिगरेट के ऊपर कैसा लिखा हुआ था, बिच्छू लिखा उतरा हुआ है उसके ऊपर, तंबाकू के ऊपर बिच्छू उतरा हुआ होता है, ना मौलाना रुकते ना गैर मौलाना रुकते, सब खाते हैं आप कुछ भी कर लो तुम। तो यह इंसान की फितरत है कि उसको बुराई से, अगर जिस चीज को, जिस चीज के बुरा होने का वो अकीदा करे और उसका बदल पाने का उसको दिमाग में यकीन हो, वही आदमी का कैरेक्टर सही हो सकता है। और सिर्फ कैरेक्टर सही करना मकसूद नहीं है, हकीकत भी यही है कि अमल का जो सही रिजल्ट सामने है उसके एतबार से अमल सही होना है और वही सही अमल सामने आने वाला है। तो मरने के बाद की जो जिंदगी है उसका अकीदा जितना मजबूत आदमी के दिल में होगा उतना अमल उसका सही होगा, इसको कुरान पाक में जगह जगह बताया गया। तो आज जो पढ़ा गया उसमें भी यह मजमून एक बहुत अजीब अंदाज में समझाया गया है। एक पैगंबर गुजरे हैं, उनके नाम के बारे में इख्तलाफ है कि उनका नाम क्या था, कुरान पाक में उनका नाम नहीं है। वो जा रहे थे एक बस्ती पर से, उस जमाने में गधे की सवारी का रिवाज था, आज भी है फलस्तीन वगैरह में गधे की सवारी बहुत आम है, जैसे घोड़े को इस्तेमाल किया जाता है सवारी के लिए, गधे को भी इस्तेमाल किया जाता है, खच्चर को भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पर एक लतीफा याद आया, हमारे हैदराबाद से करीब कर्नूल एक जगह है, जो पूरा हमारे दक्कन के लोग हैं वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं अरबों की एक जमात के साथ कर्नूल गया, वो जमात जो अरबों की थी उसमें फलस्तीन के और इधर के अरब बहुत से थे। अच्छा, कर्नूल में गधे बेहिसाब हैं, हर नुक्कड़ में आपको 2-4 गधे मिलते हैं, मतलब गली पे, कूचे पे, बाजार में इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं, दुकानों के सामने यहां है वहां है, उनके पास वो बहुत कीमती चीज है, मतलब गधा है किसी के पास, मतलब गाड़ी है उसके पास, एक सवारी का सामान है उसके पास। वो मुझसे पूछने लगा कि शेख महादा हल ये हमर लिमादा, ये गधे क्यों ऐसे फिर रहे हैं, इनका कोई मालिक नहीं है। मैंने कहा ये घर का है ना घाट का, ये ऐसे ये बीच का है। वो कह रहा था अगर हमें चांस मिले तो हम तो ये सारों को लेके जाए अपने पास, हमारे पास तो बड़ी कीमती चीज है ये। ऐसा कह रहा, वो गधे की सवारी उनके पास थी, वो पैगंबर के पास वो जा रहे थे। एक बस्ती पे से उनका गुजर हुआ, वो बस्ती वीरान हो चुकी थी, सारे लोग मर गए थे, और घर उजड़ गए थे, वीराना हो गया था, कोई बस्तियां मकान छत गिर गए हैं, टूटे फूटे हो गए हैं, बस्तियां छत से गिरी हुई हैं, छतें उसकी सब यहां से वहां तक जमीन पर आई हुई हैं। तो हसरत से उनकी जुबान से निकला अन्ना यही हादी बादम होती है, अब ये पूरी बस्ती मर गई है, अब अल्लाह पाक इसको कैसे जिंदा करेगा, क्या जिंदा होगी। होता ना एक आदमी अफसोस में कहता अब इसके होने की कोई चांस नहीं है। औकल्लदी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादम, उनकी जुबान से निकला कि अब ये जिंदा नहीं हो सकती। फ़ामातहुल्लाह, अल्लाह ने उनकी उसी वक्त मौत दे दी, वो वहीं मर गए। और कितने दिन मरे रहे मालूम, मिअता आमिन, सौ साल तक। फ़ामातहुल्लाह मिअता आमिन, सौ साल तक उनको अल्लाह ने मार दिया, वहीं पड़े रहे। सुम्मा बाअथा, फिर वहीं उनको जिंदा किया। कालकम लबिस्ता, पूछा कब से हैं आप यहां पे, अल्लाह ने पूछा आप कितनी मुद्दत से हैं। काल लबिस्त यौमन औबाद यौम, कहने लगे मेरा गुमान यह है कि एक दिन शायद मैं बेहोश पड़ा रहा या एक दिन का कुछ हिस्सा मैं बेहोश पड़ा रहा, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। एक दिन गुजरा है या एक दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, पूरा दिन भी नहीं गुजरा है। अल्लाह ने फरमाया कि जी नहीं, बल लबिस्त मिअत आमिन, तुम सौ साल से यहां पर हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि मेरी कुदरत देखो, असल मेरी कुदरत है, कितनी कोई चीज वीरान हो जाए, कितनी कोई चीज आबाद हो जाए, आबादी को वीरान करने में टाइम नहीं लगता, वीराने को आबाद करने में टाइम नहीं लगता, मरे हुओं को जिंदा करने में वक्त नहीं लगता, जिंदों को मार देने में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। फरमा फंदुल्ला तामिक व शराबिक लम य तसन्ना, जरा अपना तोशा खोलो। फरमाया कि उसमें जरा बराबर खराबी नहीं हुई है। अल्लाह फरमा रहे फंदुल्ला तामिक व शराबिक लम य तसन्ना, अपना खाना देखो, अपना पीना देखो, उसमें कोई खराबी नहीं आई। कोई फ्रिज का सिस्टम नहीं था, कोई फ्रोजन करने का सिस्टम नहीं था, खुले मैदान के अंदर सौ साल तक खाना तोशेदान के अंदर जैसे का वैसा। अच्छा ये तो इनके जहन की तारीफ कर रहा था कि मैं एक दिन हुआ यहां पे मर रह के या कुछ और रिश्ता हो चुकी, मेरा खाना खराब नहीं हुआ। फरमा वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे को देखो, वो गधा मर गया, मर के उसके गल गया, सड़ गया, उसकी हड्डियां अलग अलग हो गई, उसकी खाल खत्म हो गई, उसका गोश्त खत्म हो गया, खाली गधे की हड्डियां पड़ी हुई थी। ताकि यकीन आ जाए, ये नहीं कि अगर तोशेदान के अंदर खाना जैसा का वैसा है तो अरे मैं समझ जाता कि थोड़ा ही टाइम हुआ। तो मैं नहीं, ये हमारी कुदरत है कि हमने तुम्हें दिखाने के लिए खाने को खराब नहीं किया और गधे को उसकी तभी मौत दे दी। गधा सौ साल तो जीता नहीं, वो मरा भी, वो गला भी, वो सड़ा भी, उसका उसकी हड्डियां अलग हो गई, उसकी खाल खत्म हो गई, उसका गोश्त खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी उसकी। वंदुर इला शिमारिक वली नजअला का आयत लिन्नास, हम निशानी बनाना चाहते हैं आपको लोगों के लिए। फिर उसके बाद फरमाया कि अच्छा आप देखो हमारी कुदरत। वंदुर इला इज़ामी कैफ़ नुशिज़ुहा, अपने गधे की हड्डियों को देखो कैसे जमा करते हैं हम इनको। उनके सामने गधे की हड्डियां झुड़ी, उनके ऊपर गोश्त चढ़ा, उसके ऊपर खाल आई और वह झुरझुरी लेके खड़े हो गए इनके सामने। वंदरी लगा में कई फल तुम नक्सू लहमा, कैसे हम उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबैयन लहू काला आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, जब ये बात उनके सामने आई तो फरमाया मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह पाक हर शय पर कुदरत रखता है, मुझे यह नहीं कहना चाहिए था कि अन्ना युहयी हादिहिल्लाह, इस बस्ती को अब फिर जिंदा करने का कहां आसार है, अब फिर जिंदगी, फिर ये बस्ती कैसे जिंदा हो सकती है, ये मैं नहीं कहूंगा। वालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह पाक हर शय पर कुदरत रखते हैं, इसलिए जो वो चाहें वो करते हैं। फिर इसी रुकू के अंदर एक और मिसाल के जरिए से इस मजमून को ज़हन नशीन कराया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा रब्बी अरिनी कैफ़ा तुहयील मौता, परवरदिगार मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। क़ाला अवलम तुमिन, फरमाया इब्राहिम ईमान नहीं है हमारी बात पर, जब हम कह रहे हैं जिंदा करेंगे, कहेंगे भला क्यों नहीं है, ईमान से थोड़ी बहस है यहां पर, ईमान की कोई बात नहीं है यहां पर, बस मैं देखना चाहता हूं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाडले पैगंबर, अल्लाह ताला के खलील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेहद चाहते थे अल्लाह पाक, बहुत ज्यादा, और उनकी नाज बर्दाश्त करते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अंदाजा था कि अल्लाह पहले मेरे कितने नाज हो गए, मैं भी अल्लाह को खुश करने में मैंने क्या कमी की, हर इम्तिहान में कामयाब हो गया, बच्चे को छुरी फेर दी, बीवी को ले आकर छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया, आग में कूद गया, वक्त की पूरी ताकती ताकतों से टक्कर ले लिया, और सब चीजें पता थी इब्राहिम को, मैंने मेरे अल्लाह के लिए क्या किया। इब्राहिम को अल्लाह बहुत चाहते थे, वो खलीलुल्लाह थे। तो तो इस वजह से लड़का ने मुझे दिखाओ आप कि कैसे जिंदा करते हैं। फरमाया कि भाई अवलम तो वो काला बला, जो नहीं ईमान की तो बात है, ईमान की कोई बात नहीं है, मैं ईमान वाला हूं। बला के लिए अतमइन्ना कल्बी, एक दिल पर तसल्ली चाहता हूं कि देखूं कि रियल होता कैसे है ये। काला फकुद अरबा तमिन तैयर, फरमाया चल ठीक है हमारे लिए क्या मुश्किल है, दिखाते हैं अभी आपको। चार परिंदे पकड़ो, फसुरहुन्ना इलैक, और अपने से मानूस करो, आदि बनाओ उनका, उनको पालो अपने पास कि वो आप कहीं भेजे तो चले जाएं। जैसे पालतू कुत्ता होता है उसको बुलाएं तो वो आ जाएं। तो चार परिंदों को पाल के मुख्तलिफ अपने से मानूस करो। कहने के ठीक है, उन्होंने मानूस किया। हमें इसको जुबा करो, चारों को जुबा करो, चारों को जुबा करा दिया, चारों के पीसेस बनाओ, पीसेस बना दिए, और उनके पूरों का गोश्त मिला दो, सब मिक्स कर दिया। चार परिंदों का गोश्त काट के टुकड़े करके मिक्सअप कर दिया पूरा। फरमा मिक्सअप करने के बाद उसके चार हिस्से करो, चार हिस्से कर दिए। फरमा चार पहाड़ों पे चार हिस्से रख दो गोश्त के, मिक्स गोश्त के, चार परिंदों को, चार परिंदों के मिक्स गोश्त के चार हिस्से चार पहाड़ों पे रख दो। उसके बाद कहो कि अल्लाह के हुक्म से आ जाओ मेरे पास, और ऐसी जगह पे रखो कि तुम्हें नजर आए कि कहीं समझने लगो कि उड़ के कोई दूसरे आगे। फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिन्हुन्ना जुज़अ, फिर एक पहाड़ पर उनका जुज जो है ना, उनके पास उनके हिस्से रख दो। सुम्मा दुउहुन्ना, फिर बुलाओ तुम अपनी तरफ। याती ने कैसा आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया, परिंदे काटे, उनको मिक्स किया, उनके हिस्से बनाए, सामने के करीब के पहाड़ियों पर चार रखा, कहा कि आ जाओ मेरे पास, जैसे मानुष तो थे वो परिंदे उनके पहले जिंदगी के अंदर, बुलाओ। तो वो सब फड़फड़ा के अपनी अपनी जगह और अपने अपने गोश्त से मिलकर तैयार हो गए आगे। वालम अल्लाह अजीज हकीम, इस बात को यकीन कर लेना कि अल्लाह पाक गलबे वाला है और हिकमत वाला है, कोई काम अल्लाह नहीं कर सकता। ये बात नहीं, अल्लाह होते ही नहीं वो जिसके बारे में ये क्वेश्चन रेज हो सके कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तो जब अल्लाह ये कह रहा है कि सारे इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा करूंगा और हर इंसान को उसके अमल के मुताबिक बदला दूंगा, जन्नतियों को जन्नत दी जाएगी, जहन्नमियों को जहन्नम दी जाएगी, अच्छे लोगों को अच्छा सजा मिलेगा, बुरे लोगों को बुरी सजा मिलने वाली है, ये बिल्कुल कंफर्म और यकीनी बात है। कुरान पाक इस अकीदे को, इस मजमून को जगह जगह बहुत तफसील से बयान करता है। ये मजबूत होना चाहिए अपना, और ये जितना ध्यान में अपने होगा, अपना अमल, अपना कौल, अपना किरदार, अपनी डीलिंग, अपने मामलात, अपने माशरत, अपने सब चीजें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक गुजारना हमारे लिए आसान हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ آپ کے مبارک کلام کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہمارے دل و دماغ میں ان کو داخل فرما دیجئے، قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے، ہمارے آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے غموں کے غلط ہونے کا ذریعہ فرما دیجئے، اس کے تلاوت کرنے کا، اس کے پڑھنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا بنائیے، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنائیے، اس کے جو مضامین ہیں مولا اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط اور پختہ فرما دیجئے، اور اس کے مطابق ہمارے جسموں کو استعمال فرما دیجئے. اے اللہ اس کے اثرات کو ہمارے گوشت میں، خون میں، پوست میں، ہڈیوں میں، بالوں میں، سب جگہ گھونٹ دیجئے، داخل فرما دیجئے. اے اللہ اس قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں بنا دیجئے، اس قرآن کی جو تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے مطابق اے اللہ ہماری زندگیاں بنا دیجئے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، رمضان کے مبارک مہینے کے مولا تمام حسنات کو قبول فرمائیے، اخیر عشرے کی خاص برکات عطا فرمائیے، ایک کو من النار کا فیصلہ ہم سب کے حق میں فرمائیے.
ہمارے والدین کے حق میں فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں فرمائیے، ہمارے دوستوں کے حق میں فرمائیے، جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں ان کے حق میں فرمائیے، ہمارے لیے بچوں کے حق میں فرمائیے، ہمارے بھائیوں بہنوں کے حق میں فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ مولا جہنم سے آزادی مل گئی تو بڑا مزہ آ جائے گا، پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے مولا آپ ہی جانتے ہیں کہ وہ مبارک قدر شب قدر کب ہے۔ اے اللہ تیسواں مہینہ ہوتا ہے تو الگ تاریخیں پڑتی ہیں، انتیسواں ہوتا ہے تو الگ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون سی ہے، اور ویسے ساری راتیں نورانی ہیں۔ اے اللہ ان نورانی راتوں کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، ہمارے مسائل کو حل فرمائیے۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، یہ سر کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اے اللہ اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پروردگار ہم اپنے وعدے پر ہماری استطاعت کے بقدر ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار آپ سے معافی کی درخواست ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، باریک اور موٹے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چھپے اور ظاہر سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خلوت اور جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، دن کے اور رات کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دنیاوی حاجتیں آسان فرما دیجئے، دنیاوی حاجتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، مشکلیں دور فرمائیے۔ اے اللہ پریشانیوں کو ختم فرمائیے، راحت کی سکون کی عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔